जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जसुदानंदन ब्रज जन रंजन जसुदा जसुदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बन चारी जमुना तीर बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम जयो राधे श्याम राधे श्याम जयो राधे श्याम निताई गौर हरि बो आप लोगों आगे आ सकते हैं, पीछे जो आज बैठते हैं स्पेस है, नहीं तो पीछे वाले भी आगे आ जाओ, नहीं तो आगे वाले आगे आ जाओ, स्पेस है, बैठ सकते हैं। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की स्कंद संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री द्वारिका धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा देवी जमुना देवी की वृंदा देवी तुलसी महारानी की जुग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के श्लोक संख्या 16 और 17 यही है ना? ओके। श्लोक संख्या 16। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः हारं सरस्वती पद्मान् अजनागाश्च कुंडले। प्रजापतियों में से एक विश्वकर्मा ने तरह तरह के अलंकृत आभूषण दिए। विद्या की देवी सरस्वती ने गले का हार, ब्रह्मा जी ने कमल का फूल तथा नागलोक के निवासियों ने कान के कुंडल प्रदान किए। श्लोक 17। ततः कृतस्वस्तयनोत्पलस्रजम् नद्द्वरीफां परिगृह्य पाणिना चचालवक्त्रं सुकपोलकुण्डलम् सब्रीडहासं दधति सुशोभनम् ततः कृतसस्तयनोत्पलस्रजम् नदद्वरीफां परिगृह्य पाणिना चचालवक्त्रं सुकपोलकुण्डलम् सब्रीडहासं दधति सुशोभनम्। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात कृतस्वस्तयना शुभ अनुष्ठान द्वारा नियमित रूप से पूजी जाकर उत्पल स्रजम कमलों की माला नदत गुंजार करते हैं द्विरेफाम भौरों से घिरी हुई परिगृह पकड़कर पाणिना हाथ से चचाल आगे चल पड़ी वक्त्रम मुख सुकपोल कुंडलम कान के कुंडल से अलंकृत गाल सब्रीडहासम लज्जा से मुस्कुराती दधती विस्तीर्ण करती सुशोभनम अपनी प्राकृतिक सुंदरता को। अनुवाद एवं तात्पर्य इस प्रकार है। तत्पश्चात शुभ अनुष्ठान द्वारा पूजित माता लक्ष्मी कमल पुष्पों की माला हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करने लगी, जिनके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे लज्जा से मुस्कुराती हुई कुंडल से गाल अलंकृत होने के कारण वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। तात्पर्य, लक्ष्मी जी ने खीर सागर को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया, किंतु वे नारायण के वक्षस्थल पर निरंतर वास करती है। वे इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी तक को तथा अन्य जीवों को वरदान देती है, फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहती है। यद्यपि वे खीर सागर से उत्पन्न हुई प्रतीत होती थी, किंतु वे तुरंत ही नारायण के वक्षस्थल पर अपने नित्य स्थान को लौट आई। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नतुंश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सोचता हूँ कि आप में से अधिकांश है जो रेगुलर क्लास में नहीं आते, आज भी शायद आ गए, तो आपको शायद प्रसंग पता नहीं होगा। ये प्रसंग इस प्रकार है, देवता और असुर दोनों मिल करके अमृत प्राप्ति के प्रोजेक्ट के लिए खीर सागर मंथन कर रहे हैं, खीर समुद्र को, और सागर मंथन वर्णन हो रहा है जिसमें कई चीजें निकल चुकी है, अभी ये निकली हैं लक्ष्मी देवी, कई चीजें निकली है, कई देवता ले लिए, कभी ऋषि लोग ले लिए, कभी असुर लोग को लिए, सब ले जाते थे जो जो समन, अमृत मिला नहीं, अभी समन निकल रहा है। तो अभी लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई खीर सागर से तो उनका इतने तेज था, और उसके तेज को वर्णन करते हैं जैसे कोई स्फटिक पर्वत में सूर्य की किरण पड़े, जो किसने तेज जिस प्रकार चमकती, इस प्रकार चमकती चेहरा था, बिल्कुल सद धज करके भगवती लक्ष्मी वो प्रकट हुई। उसको देख करके वहां जितने सुर थे, असुर थे, मानव और जो थे, सब उनको देख करके मोहित हो गए, और उनको अपना बनाने के लिए इच्छा से उनको कैसे खुश करें वो गिफ्ट देने लगे। सबसे पहले अब लिस्ट बता गया, इंद्र ने क्या ला कर दिया, वो क्या दिया, बोले चलो हम आपको पूजा करते, पहले अभिषेक करते हैं, पहले अभिषेक किए, बोला फिर आज जन्मदिन है, आज अभिषेक होगा आपका। तो अभिषेक सामग्री सब ला करके, कोई धरती अभिषेक सामग्री देवता है सब ला करके बाकायदा अभिषेक किए। अभिषेक हो जाने के बाद फिर श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार के लिए कपड़ा ला करके, बोलते हैं कि कपड़ा भी दिया गया ला करके, कपड़ा ला कर साथ कौन समुद्र दिया, सागर ने कपड़ा ला कर दिए, केवल कपड़ा कहाँ पहने, पहने अलंकार, तो विश्वकर्मा ने अलंकार दी, और सरस्वती माता ने हार दी, ब्रह्मा ने कमल दी, ब्रह्म लोक से कमल लेकर आए थे, यहाँ का कमल नहीं है इम्पोर्टेड, और नाग लोक से निवासियां वो कान के कुंडल लेकर आए थे, यहाँ का लोई बाजार वाला नहीं है, तो वहां से कुंडल लाए थे। तो इस प्रकार ये सब सामग्री को, ये जो वस्त्र सब इम्पोर्टेड, यहाँ का नहीं, सब दिव्य है, ये भौतिक ब्रह्मांड का नहीं है, सब कहां से लेकर आए थे। तो इस वस्त्र को लक्ष्मी देवी ने पहन ली, श्रृंगार अलंकार हार फार से पहन ली। ब्रह्मा जी ने जो कमल दिए थे दिव्य कमल, वो कमल को वर्णन करते हैं कि उसके चारों तरफ भंवरे अभी भी गुनगुना रहे थे, इतने सुंदर स्मेल था, ये है भी कमल, ये पता नहीं कुछ, तो खुला ही नहीं, खुला स्मेल का। तो तो लक्ष्मी जी के जो ब्रह्मा जी ने कमल दिए थे हाथ में, वो तो इतने ताजा इतने सुगंधित युक्त था कि भौरे छोड़कर जा ही नहीं रहे थे, भ्रमर गुंजार करते चारों तरफ गुनगुना कर रहे थे। और उस कमल को हाथ में लेकर के इस प्रकार शोभा सब प्रकार के कुंडल हार और सब पहन करके देवी लक्ष्मी जब चलने लगी तो उनके सुंदरता वर्णन करते हैं। ततः अभिषेक के बाद में सामग्री में पहले स्वस्ति वाचन हुआ, ब्राह्मण लोग स्वस्तयन किए, स्वस्ति वाचन करने के बाद में और जो ब्रह्मा की दिया हुआ कमल को हाथ में ले ली, जिसमें द्वरे फंग परिहु पाणिना, जब हाथ में पकड़ी तो चारों तरफ भ्रमर भौरा गुंजार कर रहे थे। चचाल बक्त्रंग सुकपोल, इस प्रकार चलने लगी और कपोल मतलब उनके दोनों गाल में जो कुंडल नागलोक से आया था इतने सुंदर चमचमा रहा था। सुकपोल कुंडलम सब्रीड़ हासम, और ये सारे अलंकार तो केवल बाहरी सजावट है, अपनी सजावट क्या है ना उनके हासी उनके स्माइल मुस्कान। सब्रीड़ हासम, क्योंकि लक्ष्मी जी स्त्री थी तो लज्जापूर्ण हासी, लज्जा स्त्रियों के भूषण होता है, असली अलंकार उनके शर्म होता है। तो शर्मिले होती हुई हासी दधती सुशोभनम, और इस प्रकार से उनके पूरा सजा उनके हासी उनके चली इतने सुंदरता को प्रकट कर रहा था। दधती सुशोभनम, सभी पूरी तरह से मोहित हो रहे थे उस सुंदरता को देख करके। तो इतना ही वर्णन इस श्लोक में करते हैं कि लक्ष्मी देवी अभी चल पड़ी सद्धज करके, हाथों कमल लेकर चल पड़ी। कहाँ चलकर जाएगी, जितने सुर असुर थे सब अपना अपने स्टार को, ट्रिपल स्टार टू स्टार फोर स्टार जो भी थे सब अपना अपने सब सामान लेकर के रेडी तैयार हैं कि भाई हम इधर है, हम सुवांशो इतने इम्पोर्टेंट, सब अपना मार्केटिंग करने लगे। लेकिन लक्ष्मी जी किसी को पसंद ना की, नहीं की। इसमें कहते लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी तक को वरदान देने में समर्थ थी, क्योंकि भगवती लक्ष्मी भगवान की प्रेयसी है। यद्यपि लगता है कि वो क्षीरसागर से प्रकट हुई, क्षीरसागर से प्रकट हुई कि भगवान की इच्छा था, भगवान वही खड़े थे देवताओं के तट पर, देवताओं के पास में, तो लक्ष्मी जी ही प्रकट होकर भगवान को स्वीकार की, भगवान के पास चली गई। भगवान की महत्ता को दिखाती थी लक्ष्मी। लक्ष्मी जब प्रकट हुई इस प्रकार सज्जन की चली, सारे देवता सारे असुर बुरी तरह से मोहित होकर चाहते, लेकिन लक्ष्मी किसी को पसंद नहीं की, सबको रिजेक्ट करते 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 सीधा भगवान के पास जा रही है। नारायण उनको देखते नहीं थे, ठीक बिल्कुल उदास किधर बैठे। लक्ष्मी जा करके चारों तरफ घूम फिर करके कितने प्रभाव से, भाई थोड़ा देख तो ले कुछ तो करे, भगवान कोई पड़ी नहीं, तुम कितने सुंदर हो तो हो क्या। लक्ष्मी जी बोर हो गई बुरी तरह से, चाह बोले इतने हजारों लाखों संख्या में सुर असुर पीछे पड़े लेकिन ये देख नहीं रहे मुझे। इतने सुशोभनम हर प्रकार के सौंदर्य अलंकार सब लेकर के, लेकिन भगवान को कुछ नहीं पड़ी। आत्माराम है, भगवान किससे फंसने वाले नहीं है। लक्ष्मी जी हम लोग तो यहाँ के जो सब सुंदरता तो कुछ है ही नहीं, क्या वर्णन करे। यहाँ के जो शास्त्र में कवि उल्लेख आता है, इस भूमंडल के जो स्त्रियां है जिनको बहुत विश्व सुंदरी मान लो, आजकल तो पता नहीं ग्राम सुंदरी भी होते कि नहीं, लेकिन सिटी सुंदर भी नहीं होता ना, सीधा विश्व सुंदरी है ना, कोई इंडिया क्वीन मिस, अच्छा मिस बोलते हैं उनको, तो शादीशुदा नहीं करते क्या। अच्छा तो जो भी हो, भारत के जो बड़े माने जाते हैं फिर विश्व के बड़े माने जाते हैं, और हम लोग का हिसाब से तो जो फिल्म स्टार होते हैं हीरोइन उनको ज्यादा सुंदर मानते हैं, मेकअप वेकअप ज्यादा करके, लेकिन उनको देवता नहीं, देवताओं के नीचे धरती से ऊपर जो जख्यादि लोग हैं वो लोग देख करके, जो टॉयलेट में कीड़े चलते हैं जिस प्रकार हम उसको देखते हैं ऐसे करके ऐसे दिखते हैं, नाक उठा करके, ये सुंदरता है, इस प्रकार दृष्टि से मानवी को देखते हैं जख्याणी आदि, और उनको देवी आदि जो देवताओं के जो स्त्रियां हैं उनको इस नाक उठाकर देखती है, और उसके ऊपर 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 लोग ब्रह्मलोक पर्यंत है, कितने कितने सुंदरता है। और ब्रह्मलोक पूरे और भी और लोक है, लेकिन उन लोग की सुंदरता वैकुंठ के जो स्त्रियां हैं उनके साथ तो किसी कीमत में हम तो वैकुंठ को देखे नहीं सुने नहीं क्या समझे, खाली इतना जानते कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, कैसा है वो बोला नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। तो इतने सुंदरता लक्ष्मी, और ऊपर से सारे देवता चुन चुन करके सुंदर सुंदर अलंकार हरि शब्द सुशोभनम, इतने लेकिन भगवान को कुछ नहीं पड़ी। भगवान के सामने करोड़ों कंदर्प भी आकर हार कर जाएंगे, कोई फंसा नहीं सकता उनको। तो इसे भगवान को जाकर के जब लक्ष्मी जी खड़े, भगवान उदास भाव से थे, तो लक्ष्मी जी बोलते कि प्रभु आप है, आपके अंदर सर्व गुण गण निलय, कौन सा ऐसे गुण सदगुण नहीं जो आप में नहीं है, लेकिन आप में भी अवगुण है। मैं देख रहा हूं आपके ये कमी है, क्या कमी आप में है ना, मैं इतने प्रयास करके सद धज के मुझे देखते भी नहीं, उदासीनता पसंद नहीं करते आपने, सारे करोड़ों जनता पीछे पड़े हैं, आपको कुछ बड़ी नहीं है, ये आपके कमी है। ये कमी सुंदरता ही है, गुण है ये, अवगुण नहीं है। तो ये कमी बताई, बोले आप भले मुझे ना चाहें, मुझे ना देखें, लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूं, मैं तो आई हूं आपके चुन करके, आपको वरण कर चुकी हूं, अब मैं आपके एक गुण मुझे पता है, ये सारे आप मुझे देखते नहीं है, लेकिन मुझे आपके गुण पता है ना, क्या जो आपके चरण में शरणागत होते हैं आप उनको कभी ना उदास, उनको फेंक नहीं देते, उनको स्वीकार करते हैं। तो आपके इसी गुण के कारण, शरणागत वत्सल, इस गुण के कारण मैं आपके चरण में शरणागत हो रही हूं, चाहे मुझे अश्लीष्यवांग पादरताम पिनष्टम, आप मुझे आलिंगन करो या लात मार के भगा दो, आपके अधिकार है, मैं तो छोड़कर जाने वाली नहीं हूं। इस प्रकार से शरणागत चरण में गिर पड़ी। जो इस प्रकार शरणागत होते हैं, भगवान के स्वभाव है, जो शरणागत हो गए चरण में तुरंत उठाएंगे उसको, उठा करके गले लगाए, बोले वक्ष स्थल में बैठो, वक्ष विलासिनी, उनके आसन दे दिए भगवान के हृदय में, हमेशा बोले हमेशा ही रहो। लेकिन लक्ष्मी देवी यद्यपि सीट मिला उनको भगवान के वक्ष में, बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे यहां पसंद नहीं, क्या मैं आपका चरण सेवा करूंगी, और नीचे उतर के चरण सेवा करती है। और हम लोग तो कहीं के नहीं है, हम बोलते हैं शर्म चढ़ जाए, लेकिन उनको वक्ष में सीट मिला था, उतर करके चरण सेवा करती है, ये सर्विस एटीट्यूड, दास दास भावना किस प्रकार होना चाहिए। तो भगवती लक्ष्मी नित्य भगवत संगिनी है, सारे धन संपदा सौभाग्य ये सबके देवी है, सबके मालकिन है, लेकिन होते हुए भी भगवान के चरण में आश्रित करके रहती है। हमारे पास कुछ नहीं, गोबर है, गोबर से भी गोबर गिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम क्या क्या सोचते हैं, लेकिन नहीं, भगवान के पास सब कुछ छोड़ करके पूर्ण जीरो होकर के वहां शरणागत हो जाओ। जब जीरो होकर के उनके शरण में चले जाओ तो हीरो बन सकते हैं, लेकिन हीरो बनेंगे तो जीरो ही रहेंगे, हीरो तो बन ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से भगवती लक्ष्मी सागर कन्या माना जाता है, सागर से प्रकट हुई थी, इसीलिए हमारे भगवान जगन्नाथ जी को बोलते हैं ये तो जमाई साहब है, क्योंकि उनका समुद्र किनारे मंदिर है ना, बोलते समुद्र तो लक्ष्मी जी के मायके होगा ना, मायके है, बोले फिर समुद्र के एरिया है सब, समुद्र तटवर्ती, वो बोलते मेरे पापा के घर है, आप यहाँ आए हैं तो वहीं रुक जाओ, पर वहीं रुके हैं, रुके अकेले भी नहीं, भाई बहन को साथ में ले रुके हैं, तो ही रुके हैं। तो इसलिए कई ऐसे जगन्नाथपुरी में ऐसे लीला कथाएं सब लोक कथा में है, जिसमें लक्ष्मी जी का बहुत प्रभाव है, लक्ष्मी जी बहुत प्रभाव है। एक लोक कथा में कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी को कोई चंडालनी थी, मतलब अच्छी जात की नहीं थी, मृष जात की थी, लेकिन वो लक्ष्मी देवी की पूजा की मार्गशीर मास के गुरुवार के दिन, और बिल्कुल बड़े श्रद्धा से लक्ष्मी जी की पूजा की, लक्ष्मी जी के लिए कुछ बना करके भोग अर्पण की, लक्ष्मी देवी श्री मंदिर अपने मंदिर छोड़कर चली गई उनके घर में, उनके पूजा भोग स्वीकार करने के लिए। जब स्वीकार करके आ रहे थे दोपहर में वो चंडालनी के घर में, तो बड़े ठाकुर बलदेव जी वो तो बैठे थे ना, उनके नजर पड़ गया, बोले ये हमारी घर की बहू है, ये तो बलराम जी जेठ होंगे ना, जेठ हैं, और लक्ष्मी जी ऐसे घूंघट भी उनके सामने नहीं जा सकती, लेकिन देख लिए, बोले ये तो कृष्ण के पत्नी, वो बाहर किसे गई थी, उस कॉलोनी से आ रहा है, वृक्षों की कॉलोनी से, यहां से आ रहा है। तो बलदेव जी को पसंद नहीं है, बोले वो तो गया, उनके जाति पद से गया, वो हमको किसी सेवा करी, हमारे लिए कुकिंग करती है, हम उसे नहीं खाएंगे, ये बनाने से हम नहीं खाएंगे। और कहेंगे कहेंगे किसको, उसको बोल नहीं सकते, बहू को डांटे नहीं, घुस हो गए। लक्ष्मी जी देखे कि जेठ ने देख लिए और नाराज हो गए, तो नाराज होकर के बोले कन्हई, कन्हई कर जगन्नाथ को बुलाए, बोले हाँ, बोले क्या हो रहा है, बहू कैसे गया था, आपको बोल कर गया था, नहीं पता, नहीं मुझे तो पता नहीं, भगवान ही बड़े ड्रामाबाजी करते हैं, तो नहीं पता आप ना, देखो मुझे तो इसको पसंद नहीं है, मैं नहीं खा सकता हूँ, किस कॉलोनी में गया था, किसके घर में होकर आया, खा पी करके गया, अभी जब पवित्रकरण नहीं होगा, हमने रहते परेशान नहीं करते, हम कुकिंग करते हैं, हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए क्या आज्ञा है ना, मैं तो उनका पसंद नहीं खा सकता, जो आप कहेंगे आप बड़े हैं, मैं तो वही फॉलो करूंगा। देखो सुभद्रा जी है, अपना चला है, जो करे नहीं तो मैं तो नहीं खा सकता, मैं तो चले, मैं ये घर में नहीं रहूंगा, ये घर में सुस अनित्य अन्य मैं नहीं रहूंगा, आपका क्या कहना है भाई साहब, आप जो करेंगे मैं वही करूंगा। तो बलदेव जी निकल के उसके पीछे पीछे जगन्नाथ भी निकले, और लक्ष्मी जी आकर के जेठ के सामने नहीं जाएंगे, अपने पति के बोले ये कर क्या रहे हैं, उनको समझाओ कि अपने भक्तों की सेवा वो नहीं करते हैं क्या, भक्तों में जात पात क्या है, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन बोले वो भाई साहब उनको कौन बात करे भाई, जो समझ में आ गया बड़े हैं, मैं उनको नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा तो इसे जाना ठीक नहीं, अब क्या खाओगे पियोगे ना भाई, वो भाई साहब जा रहे हो, अब करें क्योंकि छोटे मोटे थोड़ी हैं, संसार को धारण करने वाले बड़े ठाकुर हैं। तो दोनों भाई निकल गए घर से, लक्ष्मी जी समझाया नहीं माने, बोले जाओ फिर मेरा दोष नहीं देना, देखता हूँ कैसे खाते हैं आपने, आपका लंच में देखती हूँ क्या करते हैं। तो लक्ष्मी जी अपने पल्लू को कमर में कसकर खड़ी होगी, बोले जाओ ठीक है, कैसे कौन खिलाएगा हम देखेंगे, खिलाने कुकिंग करने वाला तो डिपार्टमेंट हमारा है, आप कहाँ से खाएंगे देखते हैं। और बलदेव जी को दिखाने के लिए कृष्ण जी बोले देखो भाई, भाई साहब जा रहे हैं उनके साथ में, देखते हैं क्या करते हैं, निकल गए। और दोनों भिखारी बने, अब तो कोई घूम तो देगा ही नहीं, अच्छे लक्ष्मी के घर में खा रहे थे, और यहाँ तो किसी ने कुकिंग तो करना आता नहीं, तो गए ब्राह्मण कॉलोनी में भिक्षा मांगने के लिए, कोई ब्राह्मण देखा तो दिव्य पुरुष है तो बुला करके तुरंत प्रणाम किया, सम्मान करके बलराम बोले देखा हमारा दुनिया सरे, अब जैसे प्रसाद लेकर आया, प्रसाद देते समय प्लेट ही गायब हो गया, उनका हाथ से प्लेट उड़ गया, घर में जाकर बोला अरे प्लेट कहाँ चला गया, घर में मेहमान आए हैं, अतिथि सेवा करना है, जाकर देख रहा है कि जो कुकिंग किया था बर्तन वो में कुछ नहीं गए, अरे ये क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा था, वो दोबारा कुकिंग करना पड़ेगा, अतिथि बैठे हैं, जाकर देखा भंडार स्टोर रूम में कोई ना रहा, सट कुछ भी, स्टोर भी खाली, बोला अरे बाप रे बाप, तो भयंकर बहुत गड़बड़ी मामला है, ये कोई हतभागा पुरुष है, नाटक करके आए कि मेरा घर तो सब निकल गया, डंडा लेकर आया, बोला हटो यहाँ से भाई, मेरा अतिथि सेवा खत्म, भागो यहाँ से, मेरे सब कुछ भाग जाते हैं, उठ जाता है आपका आने से। बलराम जी बोले अरे ये क्या हो, अपमान करके डंडा लेकर आता है, भाग गए, दूसरे घर में गए, वो बेचारा प्रधान, उनका भी ऐसे हुआ, तीन चार घर में जब ऐसे सब समन गायब होने लगा, हल्ला हो गया, भैया ये जो आ रहे हैं ना दो आदमी, समझ लो ये जो पीले और नीले, ये उनको घुसने नहीं देना, सब चला जाएगा, बिल्कुल हतश्री हो जाएंगे, हतभाग्य हो जाएंगे, अब एडवर्टाइज होगा, तुंड वायद मान लोग बोलते बोलते चार बजे, अब कोई घुसने नहीं दिया, भागो भागो भाई, दरवाजा बंद करो, तुम जाओ जाओ। अब बस एक दिन नहीं मिला, दूर गए दूसरे गांव में, वहां भी प्रचार पहुंच गया, वहां कहीं कुछ नहीं मिला, पानी ग्लास तक भी नहीं मिला, अब छप्पन भोग क्या खाएं, पेट पिचक गया, घूमते फिरते दो तीन दिन नींद कहीं भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं मिलता, लक्ष्मी जी कसकर खंड जहां पहुंच जाती है कैसे खिलाओ, डिपार्टमेंट हमारा है, सेवा हमारा, तुम कैसे कर सकती है, किसी को सेवा करने नहीं देगी, सब उड़ा दी, इतने परेशानी हो करके दूसरे दिन को बिल्कुल भूखे हो करके, अब देखे कि समुद्र किनारे जा रहे हैं, बोले कुछ मिल नहीं, गर्मी है बिल्कुल तप्त रहती है, चप्पल भी नहीं पहने थे, बिल्कुल पैर में फफला आ जाता है, और समुद्र किनारे लक्ष्मी जी ने अपने पिताजी के घर है ना, पिताजी के बोलकर कि बहुत बड़ा बंगला बना करके, घर बना करके वहां फुटबॉल लाइव चल रहा था, फर्स्ट क्लास, केवल खिचड़ी नहीं है और रे चकाचक भोजन बांट रहा, उसका स्मेल आ रहा था, लोग खा रहे थे, और ये क्या टेस्टी है, और बड़ा ठाकुर तो बोले यार हम दो दिन से खाए ही नहीं, पानी तक नहीं मिला है, यहाँ चल रहा है भंडारा, बोले जगा चलो लाइन में खड़ा हो जाओ अब क्या करें, भूख लग रहा है पानी बोले जगन्नाथ बोले लाइन में खड़े हो जाए उनका स्टोर गायब ना हो जाए। बोले लाइन वाले आपको पीटेंगे, बोले हम खा रहे तुम आगे सब हमारा खाना बंद हो गया ना। अरे हाँ ये भी हो सकता है। करें क्या, किसको बोलो ला कर दे दे, खबर भजे यार हमको लाइन में सबको क्यों परेशान, हमको ला कर थोड़ा दे दो। बोले वो बेचारा लेकर आए दो तीन लग उनका भी प्लेट मिलेगा ही नहीं, लक्ष्मी खड़े परेशान होकर के। अब बोले क्या करे कुछ करे ना, मुझे तो जगन्नाथ जी बोले मुझे तो लगता है कि मैडम ने कुछ गड़बड़ की, उनका चल रहा है ना सही में ना, आपने इतने नाराज हो गए, अब कुकिंग तो आता नहीं, खाना व्यवस्था तो नहीं कर पाते, मुझे भी ले आए, दोनों भूखे पड़े, वो क्या करें ना, फोन नंबर है फोन करो देखो कुछ है ना, नहीं आउट ऑफ कोर्ट रफानमा कर लेते हैं और क्या है, अब क्या झगड़ा करें। तो फिर जब राजी हुए तो फिर भगवान, फिर लक्ष्मी जी तो खड़ी थी इशारा मात्र से तुरंत फिर बुलाया, बोले ठीक है, मुझे वही चाहता था गुस्सा करके। अरे भक्त वत्सल में तो आपसे सीखा हूं, आप ही भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मैं एक बार चली गई आपने तो इतने एक्शन लेते हैं। तो अरे भगवान फिर बड़े वहां से बोले ठीक है और नहीं करेंगे, बस बनाओ प्रसाद प्रसाद दिला, दो दिन से खाए नहीं। तो यहाँ लक्ष्मी जी की बड़ा प्राधान्य है, इसलिए उसको श्री मंदिर कहते हैं। यहाँ श्री मतलब श्री जी मतलब राधारानी, वहां श्री जी लक्ष्मी जी है, हाँ बिल्कुल उनके ही चलता है, उनको डर के रहते हैं। जब ससुराल में रहेंगे तो भाई अपना तो ज्यादा चलेगा नहीं, तो जगन्नाथ जी ससुराल में है और अकेले होते तो कोई बात होता, भाई बहन को साथ में ले तो इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकते। तो स्वर्ग तो फिर भी लक्ष्मी, लक्ष्मी हमेशा नारायण के चरण में सेवा में रहती है। ये लक्ष्मी के प्रसंग में श्री चैतन्य चरितामृत को बड़े सुंदर प्रसंग आया है। यहाँ वृंदावन में भी एक बेल बन करके जागा है लक्ष्मी बन, अभी भी लक्ष्मी जी यहाँ तप कर रही है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर के दक्षिण भारत भ्रमण में गए थे तो रंग क्षेत्र में चतुर्मास बिताए, श्री रंग में चार महीना बिताए, और आषाढ़ से लेकर कार्तिक तो चार महीने सब करते ना अपने चतुर्मास, चतुर्मास में जो साधु संत है एक जगह में रुकते जाते नहीं। तो रंग क्षेत्र में जब पहुंचे भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले यहीं रुक जाऊंगा चार महीना, तो वहां के जो हेड पुजारी थे वेंकट भट्ट उन्हीं के घर में रहे, उनका पुत्र गोपाल भट्ट थे सेवा करते उनके घर में। तो भगवान चतुर्मयन क्या करेंगे, एक टाइम खाते थे व्रत था, डेली कावरी स्नान करते थे सुबह सुबह, रंग भगवान को दर्शन करते थे, नृत्य करते थे, मंगलाती के बाद जा करके फिर जप आदि करते थे साधन, दोपहर में एक बार भोजन लेते थे, फिर उसके बाद क्लास करते थे। दोपहर के समय क्लास होता था शाम तक। अब क्लास में सुबह सुबह पुजारी जो सुबह सेवा में रहते सारे पूरे कॉलोनी आ जाता था, भट्ट यहाँ जो श्री रंग क्षेत्र में हजारों संख्या में पुजारी हैं, तो सब सुने कि साक्षात भगवान जब क्लास दें तो फिर बताओ, हम लोग तो कोई कीड़े ककड़े के गोबर भी नहीं है फिर भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी सुनते हैं लोग उसको, और जब साक्षात भगवान जब क्लास दें तो बताओ। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोले तो लोग तो आ करके बैठते थे, सारे आकर के सारे ब्राह्मण थे अच्छे समझदार सुन रहे थे आकर के, वेंकट भट्ट उनके फैमिली बिल्कुल सामने बैठ कर सुनते थे फ्रंट लाइन में। तो भगवान कथा करते करते, और आप जानते हैं वो सब श्री संप्रदाय के हैं, दक्षिण भारत मुख्यतः श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय श्री मतलब लक्ष्मी, उनके उपास्य देह है श्री लक्ष्मी नारायण, नमो नारायण नमो नारायण नारायण नारायण, वही उनका भजन महामंत्र है ओम नमो नारायण आय। तो श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, तो भट्ट के घर में भी लक्ष्मी नारायण उपासना करते थे, बिल्कुल लक्ष्मी जी की उपासना लेकिन बैठी। तो भगवान ने बोले उनको जब मैं उनके घर में रहूंगा थोड़ा तो असली शिक्षा तो देना चाहिए, वो समझे नहीं। तो भगवान ने हंसी हंसी मजाक में एक दिन बोलने लगे, उसमें लिखा गया एक दिन बोलने लगे तारा संगे तारा निरंतर तारा संगे हैल सख्य भाव हास्य परिहासे तुही सख्य स्वभाव। सखा मानते थे, अपने परिचय नहीं देते थे, भगवान और वेंकट भट्ट दोस्त की तरह रहते थे, हंसी खुशी मजाक करते थे। तो प्रभु एक दिन क्लास में क्या बोले, प्रभु कहे भट्ट तुमार लक्ष्मी ठाकुरानी कांत बख्य स्थितापति व्रता शिरोमणि। श्री चैतन्य महापुरुष ने भट्ट से कहा, भट्ट जी तुम्हारा आराध्य देव लक्ष्मी ठाकुरानी नारायण का वक्ष स्थल में हमेशा विराजमान रहती है, और निश्चय ही सृष्टि से सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री है अंत माना जाएगा। अमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, बोले आपरा तो लक्ष्मी नारायण है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री है लक्ष्मी नारायण के मुख्य विलासिनी, लेकिन हम तो लक्ष्मी नारायण पार्टी के नहीं है, हमारा पार्टी दूसरा न क्या है न हमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, हमारा तो ग्वाला है, मेरे ठाकुर तो ग्वाला है। गोप गोचारक साध्वी है आके ने चाहे तहार संगम, बोले हमारा तो ग्वाला है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, ऐसे वाला है, गाय चराता है, ग्वाला चराता था, बछड़ा चराता था, गाय चराता है, पढ़े लिखा नहीं है, लेकिन आपके पतिव्रता ठाकुरानी लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़ करके नारायण को छोड़ करके वृंदावन में जाकर उनके पास जाना क्यों चाहती है, मेरे ठाकुर के पास क्यों जाना चाहती है, अभी तपस्या कर रही है। जब भगवान ने ये बात बोले कि आपका तो लक्ष्मी ठाकुरानी पतिव्रता शिरोमणि, फिर ऐसा क्यों जाकर के हमारे ठाकुर के पास क्यों जाके पहुंचता है। यही लागी सुख भोग छाड़ी चिर काल व्रत नियम करी तप करी ल अपार, बोले आपने वैकुंठ को छोड़ करके नियम पालन कर कठोर तप कर रही है, मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन में कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन के साथ रहना है, ऐसा क्यों। भागवत उसका वर्णन आता है, नाग पत्नियां कहती हैं कि लक्ष्मी कितने कठोर तप कर रही है, जमुना किनारे बेलवन में अभी तपरत है। भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप, कृष्ण ते अधिक लीला वैद्यज्ञादि वैद्यदादि रूप। भट्ट कहते हैं कि अरे इसमें कौन सा बड़ी बात है, आप ऐसे भेद क्यों कर रहे हैं, कृष्ण नारायण तो एक व्यक्ति होते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं केवल, ऑफिस अलग अलग है, व्यक्ति एक ही है, एक ही स्वरूप। हाँ कृष्ण इसमें थोड़ा विदग्ध भाव था, रसिक भाव अधिका है, तो इसलिए उनके पास आते हैं, लेकिन वही तो है, व्यक्ति वही है। तारा स्पर्शे नाही जाया पतिव्रता धर्म, कौतिकी लक्ष्मी चाहे कृष्ण र संगम। भट्ट जी कहते हैं देखो नारायण कहो कृष्ण कहो व्यक्ति तो एक ही है, कृष्ण रूप में थोड़ा रसिक ज्यादा है, तो इसलिए लक्ष्मी जी ने और वो ग्रेव सीट में बैठे ऐसे उनको छोड़कर जो रसिक रूप है उनके पास आना चाहते हैं, तो इसमें से पति तो व्यक्ति तो एक ही है, उनके पतिव्रता का तो कोई हानि होना होता नहीं उनके स्पर्श करने से। तो महाप्रभु बोले हाँ बात तो सही आप कह रहे हैं, सिद्धांत की दृष्टि से कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल समान है भगवत स्वरूप, लेकिन अगर रस विचार करें तो अंतर तो है, कृष्ण अलग अलग है। कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म न है नाश भटो, नहीं 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 एक ही व्यक्ति है, उनके साथ रहने चाहे नारायण के साथ रहे चाहे कृष्ण के साथ रहे, पतिव्रता धर्म का कोई नाश नहीं होता उसमें। कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म न है नाश, अधिक लाभ पाइए तारा रास विलास। बोले पतिव्रता धर्म भी नाश नहीं होगा और फायदा होगा कि जमुना तीर वनचारी रास नृत्य दर्शन करेगा, तो इसलिए वो आ जाती है कृष्ण के पास में, तो उनसे कौन सा आप इनको आक्षेप क्यों कर रहे हैं। विनोदिनी लक्ष्मी रहय कृष्ण अभिलाष, इसीलिए विनोदिनी लक्ष्मी कृष्ण का अभिलाष करती है। यहाँ तक की दोष के न करो परिहास, इसमें क्या दोष है, इसमें क्यों क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। तब प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु बोले प्रभु कहे दोष नहीं यहाँ मैं जानी, बोले मैं मानता हूँ कोई दोष नहीं है। रासना पाइल लक्ष्मी शास्त्र यहाँ सुनी, बोले कोई बात नहीं लेकिन मैं अभी तक सुना हूँ कि लक्ष्मी अभी तक रास क्षेत्र में एंट्री नहीं कर पाई, गेट पास नहीं मिला, अभी तक बाहर ही खड़ी है बैठी है। भले अगर है मालकिन उनके ही पति है तो सीधा घुस जाएगी, उनको चेक में रुक सकता भाई, कोई पतिव्रता स्त्री अपने घर में जाएगी पति के पास सिक्योरिटी चेक कर गया, सवाल ही नहीं उठता। बोला वो एंट्री अभी तक नहीं है, बाहर में खड़ी हुई है, कोई जुग बीत गया तब करिए। बोले ऐसा क्यों अंदर नहीं जा पाई। तो उस बात को सुन करके अब लक्ष्मी किरे ना पाई लिहार की कारण लक्ष्मी अभी तक कृष्ण के पास क्यों नहीं जा पाया, क्या कारण है। तप करी के छे कृष्ण पाई श्रुतिगण, बोले तपस्या करके ना बोले श्रुतिगण वो तपस्या करके कृष्ण को पा गए, तो लक्ष्मी तपस्या करके क्यों नहीं पा पाई। श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए इति के कारण भट्ट कहे यहा प्रभु सीते नाये मोर मन। भट्ट हाथ उठाते बोले प्रभु जी मैं नहीं बता सकता, मैं भी सुनी हुई इस बात को, मैं भी सुनी हूं कि हमारे ठाकुरानी, हमारे ठाकुराई लक्ष्मी, वो भी वैकुंठ को छोड़ करके, नारायण को छोड़ करके वृंदावन में वृंदावन चंद्र कृष्ण के पास आने के पास लगे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास जा नहीं पाते हैं, तपस्या में लगी हुई है, अभी तक उनको एंट्री नहीं मिला है। बोले लेकिन कई लोग तो पा जाते हैं, लक्ष्य क्यों नहीं पाते? बोले मैं तो सुनी हूं लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे कारण नहीं पता है। आमी खिद्र जीव सहजे अस्थिर, बोले मैं इतने पढ़ा लिखा नहीं, खिद्र जीव हूं, मन चंचल नहीं है। ईश्वर लीला कोटि समुद्र गंभीर, ये ईश्वर की लीला है, करोड़ों समुद्र के जैसा गंभीर है, मैं इनको क्या समझ पाऊं, लेकिन मुझे भी पता है। तब फिर भट्ट बोलता है कि आप ऐसे प्रश्न उठाते हैं, मैं आपको देखता हूं, सेवा करता, मुझे लगता है कि तुम्ही साक्षात कृष्ण जाना निज कर्म, मतलब मुझे लगता है आप साक्षात कृष्ण हो। जारे जना सही जाने तुम्हारा लीला मर्म, जो आपको जिसको आप जनाओगे वही जान सकता। तो प्लीज मुझे भी थोड़ा समझा दीजिए क्यों रहस्य क्या है। प्रभु कहे कृष्ण रे का स्वभाव विलक्षण स्वमाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण। तब फिर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने उनको सिद्धांत समझने लगे। बोले अगर आप बोलेंगे कि लक्ष्मी सबसे श्रेष्ठ है, नारायण सबसे श्रेष्ठ है, तो यही पॉइंट में उनको डाउन करा इसी संप्रदाय को। बोले हमारे प्रभु पढ़े लिखे नहीं है, गाय चराते हैं, स्कूल तो गए भी नहीं, कपड़ा भी ढंग से नहीं, इस फोन भी नहीं चला पाते हैं, ईमेल फीमेल से कर नहीं आते, क्योंकि गाय ग्वाला है, ये सब आता नहीं उनके पास, कोई फैशन फैशन नहीं है, स्कूल कॉलेज टाउन बाजार कुछ है ही नहीं। सुबह से उठ करके कलवा किए, गाय चराए, शाम को आए, फिर सोए, फिर से वही उनका काम है। और आपके प्रभु बाप रे बाप, वैकुंठपति विशाल, कितने सिक्योरिटी, कितने बड़ी ऑफिस, सिक्योरिटी, जय विजय, ये सब ड्रेस बहुत बड़े हम कारोबार। हाँ हाँ है तो सही, बहुत बड़े विशाल कारोबार। बोले तो वो सब को कारोबार वैकुंठ के ऐश्वर्य को त्याग करके लक्ष्मी जी ने ये सब छोड़ करके हमारे गोप ग्वाला के पीछे क्यों पड़ा है? और पड़ा है तो अभी तक उन पास जा नहीं पाता। आप जब बोलते हैं दोनों सेम है, नारायण कृष्ण सेम है, तो इसलिए उनके पास आया, अगर सेम होता तो जाता, अगर चलो फिर भी नहीं जाता, जा पाता किसी कारण से। लेकिन कोई भी व्यक्ति अच्छा पसंद करेगा कि नहीं? आपको कोई चढ़ा हुआ चीज दे दे और अच्छा चीज, बोले अच्छा को पसंद करेंगे हमेशा। बोले यहाँ पे इसीलिए ब्रज गोपिका भी कभी कभी सोचते हैं कि अरे हमारे पास ऐसे अच्छा बढ़िया कपड़ा नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे साधन नहीं है, मथुरा स्त्रियां कितने अप टू डेट है, स्मार्ट है, सब हम लोग नहीं है, हम तो ग्वालिन है। तो इस प्रकार ग्वालिन अगर नारायण और कृष्ण सेम होते, कृष्ण नारायण सेम होते, तो ग्वालिन भी उनके गर्लफ्रेंड है तो वो भी चलते, बोले वो हमारी तो है, वो भी कभी कभी वैकुंठ चल जाते, एक आध दिन चले जाते, लेकिन एक बार भी नहीं जाते। लक्ष्मी जी हम कर बैठी है नित्य, मैं कैसे वृंदावन में आऊं, और ये वैकुंठ के नाम सुनने के जाते ही नहीं है, यही तो गाय चराने वाले पीछे पड़े हैं, एक बार भी वैकुंठ के ऐश्वर्य के पीछे नहीं देखना चाहती है, उसका क्या कारण? बोले कारण इतना नहीं है, एक बार तो भगवान ने स्वयं रासलीला अंतर्धान हो गए, छिप गए, तो गोपियां से ढूंढने लगे कहां गए कृष्ण, कहां गए कृष्ण, ने कहीं नहीं गए थे, वही खड़े थे छिप करके, आपने को चतुर्भुज बना दी, नारायण बना दी, नारायण नारायण रूप पेड़ के नीचे खड़े हैं। गोपियां गए जाकर नारायण जी प्रणाम, कृष्ण को देखें क्या, हमारे कृष्ण को देखें क्या? कृष्ण बोलते बोले देख रे मैं ही खड़े हूं, दो एक्स्ट्रा हैंड लेकर के मुझे पहचान दे, प्रणाम करके चले गए। कृष्ण होते तो उनको प्रणाम नहीं करते, गलवाही देते, लेकिन ये नारायण है, दूर से प्रणाम करके निकल जाते। बोलते इस व्यवहार नारायण के साथ उनका, उनको दूर से प्रणाम करते हैं, और कृष्ण के साथ तो आपने फ्रेंडशिप है, तो ऐसा क्यों? और आपको लक्ष्मी अभी तक जा भी नहीं पाती, इतने बड़े पोस्ट पोजीशन से होकर के, तो उसी को समझ नहीं पाती। भट्ट बोला कि मुझे प्रवेश नहीं, बुद्धि में मेरा आता नहीं, ये मैं तो सुना हूं बात, लेकिन क्यों ऐसा है मुझे समझ, लक्ष्मी तो है ही वैकुंठ विलासिनी, ऐसे क्यों उनका कर नहीं पा। तो भगवान ने बताया, बोले इसे बुरा ना मानना, सच्चाई तो ही है कि कृष्ण मूल भगवान है, बाकी इस इतने चतुर्भुज अष्टभुज षडभुज सब अलग अलग है, उनके ही पाठ अंश रूप है, मूल भगवान कृष्ण है, इसीलिए अंश अंश के प्रति आकृष्ट होता है, अंश नहीं आकृष्ट होगा, है ना नहीं? जो होल है उसके प्रति पार्ट, जिसे ये पानी है गर्म होता तो ऊपर को जाता है, आग ऊपर की ओर जलेगा, क्यों? क्योंकि सूरज ऊपर है। अब पानी नीचे आएगा क्योंकि समुद्र नीचे है। जो भी गर्मी पदार्थ आग आदि से ऊपर जाएगा क्योंकि अंश ही उनका ऊपर है। जहां अंश ही रहेगा अंश उसी तरफ जाएगा हमेशा, क्योंकि अंश ही है ओरिजिनली श्री कृष्ण। तो इसलिए जितने नारायण नारायणी लक्ष्मी जितने सब उन्हीं के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि मूल है, उनके समान कोई नहीं हो सकता है। उनके पास जो एक्स्ट्रा विलास जो है माधुर्य आदि वो किसी के पास नहीं है, इसलिए उनके पीछे जाते हैं। लेकिन नारायण के पीछे जो उनके पास गया वो नारायण के पीछे कभी नहीं आएगा। गोपियों के बोले नारायण के पास, ना नहीं ठीक है अब हम नहीं जाएंगे वहां, वो कभी नहीं जाएंगे। बोले यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, वहां बढ़िया व्यवस्था होने दो, हम नहीं जाएंगे। यहाँ गोबर थापेंगे कंडा थापेंगे ये ठीक है, लेकिन वैकुंठ नहीं जाएंगे। और वैकुंठ भले भाग भाग कर बोले, भले हम गोबर थापेंगे, हमको यहाँ थोड़ा स्थान दे लो, हमको यहाँ रहने दे दो। क्यों? इसका मूल अर्थ है, उद्देश्य है कि कृष्ण ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन, जितने सारे नारायण जितने सारे भगवत अंश भगवत स्वरूप है सभी के ऊपर सर्वोपरि एकमात्र साक्षात मूल भगवान नारायण एकेल ईश्वर कृष्ण आर सब अभृत्य जारे जे छे नचाए तारसे छे करे नृत्य। एकमात्र परम ईश्वर, परम ईश्वर के ईश्वर श्री कृष्ण श्री गोविंद है, बाकी जितने उनके सब नारायण आदि अवतार सब उनके पाठ पार्षद है, ये मूल है। इसी बात को स्थापना किए तो भट्ट भी समझ गए। अच्छा हमारे जो लक्ष्मी नारायण बोले ठीक है लक्ष्मी नारायण पूजा, लेकिन ये मत समझो कि लक्ष्मी नारायण ही मूल है, कृष्ण उनसे आए हैं ना, हम तो यही समझे। तो बोले नहीं, मूल है से कृष्ण, उन्हीं से जितने आदि रामादि मूर्ति शुकड़ा नियमेन तिष्ठन नाना अवतार अवकरोद भुवनेशु, किंतु कृष्ण स्वयं समवत परम पुरुषो वही गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जो गोविंद श्री कृष्ण है वही सर्व कारण कारण मूल भगवान साक्षात इस परमेश्वर भगवान है, बाकी जितने सब उनके पार्ट पार्सल ऐसे हैं। तो इसीलिए कृष्ण को भगवान ने स्थापित किए, ये असली सिद्धांत है कि मूल भगवान श्री कृष्ण है और लक्ष्मी नारायण के पाठ है। यद्यपि सिद्धांत अनुसार स्वरूप के हैं, लेकिन फिर भी स्वरूप में जो अपना माधुर्य है इसी हिसाब से उनके चार माधुरी हमेशा एक्स्ट्रा रहे। वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और ये सब माधुरी कृष्ण का कोई नारायण के पास नहीं है, ये केवल कृष्ण के पास है। इसीलिए जो कृष्ण के पास गया वो कभी फिर पीछे, जो आपको 100 रुपया का नोट मिला फिर 20 रुपया 10 रुपया के पीछे पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, जिनके पास 10-20 रुपया है 100 नोट बोले मुझे मिल जाए, इनके पास जाते हैं। लेकिन ये पूर्ण है, फिर वो आधा चोटे के पास नहीं आएगा, लेकिन जो आधे चोटे में है वो पूर्ण के पास जाने के लिए इच्छा करेंगे, यही सिद्धांत है। इस प्रकार भगवान ने समझा करके फिर भट्ट परिवार को और जितने भी लक्ष्मी नारायण के यहाँ उपासक थे उनको सब इस प्रकार से सिद्धांत बताए। और लक्ष्मी जी की ओरिजिनल पोजीशन, नारायण की ओरिजिनल पोजीशन, ये सब है ठीक है ईश्वरी ठाकुरानी, लेकिन श्री राधा और कृष्ण के सब संसार जितने भी स्वरूप सब उनके, जितने लक्ष्मी आदि महिषिगण सब राधा जी के अंश ही है, अंश है, और जितने स्वरूप भगवान के नारायण जी सब कृष्ण के अंश है, ये सिद्धांत को स्थापना करते हैं। तो आज की श्लोक में जैसे सारे देवता असुर लक्ष्मी जी को देख करके मोहित होते हैं, लेकिन लक्ष्मी सीधा सद धज करके अपने पति नारायण के पास चल पड़ी, उनके किसी को कोई केयर नहीं है, सारे बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ के खड़े देखते हैं नारायण के पास जाती है। एक बार जो नारायण का हो गया फिर बाकी किसी का पीछे नहीं पड़ेगा, देवी देवता बोले ठीक है ठीक है। तो इस प्रकार जो कृष्ण का हो गया वो नारायण के बोला नारायण जी थैंक यू बट मैं तो कृष्ण का ही हूँ अब ठीक। तो इसलिए आप लोग का बड़े सौभाग्यशाली है, सीधा वृंदावन में कृष्ण भावनामृत संस्था में कृष्ण भगवान के साथ सीधा उनके नाम रूप गुणगान करते हैं, उनसे संपृक्त होते हैं। तो बिल्कुल आपके पोजीशन जो है सबसे ऊपर वाला पोजीशन है ना नहीं? हाँ, माता लक्ष्मी कभी देखेंगी तो आप सम्मान करना है, मैडम है सीनियर है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी सोचेंगे भैया वो तो उनके साथ जुड़ा है, वो भी मन में सम्मान करेगी। तो इसलिए कृष्ण भक्त बनना सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कोई पोस्ट पोजीशन है ही नहीं दुनिया में। हरे कृष्ण।